કબર ઉઠી તારે કૃપાએ ખડી લો આલી
શ્રી ચંદ્રશેખર બહુ દિનો કે પશ્ચાત ચૈતન્ય મહાપ્રભુ કા દર્શન કરને કે કારણ
વો બહુ આનંદ સે ઉત્ફુલ્લિત હો રહે થે ઓર ચૈતન્ય મહાપ્રભુ કે ચરણ મે ગિર કર વો રોને લગે ચૈતન્ય મહાપ્રભુ કે ચરણો કો પકડ કર વો રોને લગે તો ચૈતન્ય મહાપ્રભુ કૃપાવિષ્ટ હોકર ચંદ્રશેખર કો ઉઠાએ ઓર ઉનકો આલિંગન કિયા ચંદ્રશેખર કહે પ્રભુ બડો કૃપા કહેલા આપણે આશી અભૃત દર્શન દિલા તો ચંદ્રશેખર ને કહા કે પ્રભુ આપ બહુ બડે કૃપાલુ બહુ બડે દયામય આપને અમારે ઉપર બહુ બડી કૃપા કી કે આપ સ્વયં આજ હમે દર્શન દે રહે હૈ તો યે આપકી બહુ બડી કૃપા ક્યોંકિ ભક્ત લોગ જાતે હૈ મંદિર મેં ભગવાન કા દર્શન કરને કે લિયે કિંતુ કહીં કિસી કો ભગવાન આકર ઉસકે ઘર પર દર્શન દે તો યે ભગવાન કી બહુ બડી કૃપા તો ચંદ્રશેખર કહ રહા હૈ કે આપકી બહુ બડી કૃપા હૈ કે આપ સ્વયં આકર હમે દર્શન દે રહે તો હમસે યે બઢકર સૌભાગ્યશાલી ઓર કોન હો સકતા હૈ જો આપકી ઇસ પ્રકાર કી કૃપા કો પ્રાપ્ત કરતા તો આપ इसका अर्थ है कि आप हम लोगों को अपने भक्त के रूप में सेवकों के रूप में स्वीकार किया है इसलिए सेवकों पर कृपा करने के लिए आप वाराणसी आए अन्यथा वाराणसी आने का आपका कोई अन्य उद्देश्य नहीं था तो चैतन्य महाप्रभु को वृंदावन जाना था तो झारखंड होते हुए सीधे वृंदावन चले जाते किंतु वाराणसी गए हैं अपने भक्तों पर कृपा करने के लिए और उसके साथ साथ उनका एक दूसरा उद्देश्य था क्योंकि वाराणसी मायावादी सन्यासियों के लिए प्रसिद्ध है जो मायावादी सन्यासी शंकर संप्रदाय के होते हैं और भगवान को निराकार मानते हैं और सदा सर्वदा निराकार ब्रह्म की उपासना करते हैं तो इन मायावादी सन्यासियों को उद्धार करना ये भी चैतन्य महाप्रभु का एक उद्देश्य था वाराणसी जाने का इसलिए चैतन्य महाप्रभु वाराणसी होकर वृंदावन की यात्रा कर रहे हैं तो ये चंद्रशेखर कह रहे हैं कि आपना प्रारब्ध से बसी वाराणसी स्थान है माया ब्रह्म सत्य बिना नहीं सुने गाने तब चंद्रशेखर कह रहे हैं कि ये तो मेरा दुर्भाग्य है चंद्रशेखर कह रहे हैं कि मैं वाराणसी में वास कर रहा हूं तो ऐसा क्यों मान रहे हैं चंद्रशेखर कहते हैं कि ये वाराणसी ऐसा स्थान है यदि ये तीर्थ स्थान है किंतु यहां पर मैं केवल ब्रह्म और माया शब्द ही सुनता हूं भगवान का नाम उच्चारण यहां कोई नहीं करता भगवान का नाम यहां सुनाई नहीं पड़ता यहां हर व्यक्ति ब्रह्म और माया शब्द का उच्चारण करता रहता है क्योंकि वाराणसी मायावादियों का स्थान है इसलिए ये प्रसिद्ध है जो लोग भगवान को निराकार मानते हैं और संसार को माया मानते हैं और उस निराकार ब्रह्म में लीन होने के लिए ये आशा रखते हैं यही इसी को ये मुक्ति मानते हैं तो इसलिए वाराणसी प्रसिद्ध है क्योंकि बहुत सारे मायावादी सन्यासी यहां निवास करते हैं तो चंद्रशेखर कहते हैं कि ये हमारा प्रारब्ध कर्म है कि जिसके फल स्वरूप हमें वाराणसी वास मिला क्योंकि ये भक्त थे अंतर में तो इसलिए ये निराकार ब्रह्म माया शब्द इनको अच्छा नहीं लगता ये तो जो भक्त होते हैं ये भगवान का नाम कीर्तन करना चाहते हैं भगवान का नाम श्रवण करना चाहते हैं ये माया ब्रह्म शब्द से उन लोगों की इतनी रुचि नहीं भक्तों की तो इसलिए चंद्रशेखर कह रहे हैं कि यहां पर मेरा दुर्भाग्य है कि सदा सर्वदा मैं माया और ब्रह्म शब्द यही सुनता रहता षड दर्शन व्याख्या बिना कथा नहीं यथा मिश्र कृपा करी मोरे सुनान कृष्ण कथा तो ये चंद्रशेखर कह रहे हैं कि मायावादी वाराणसी ऐसा स्थान है यहां केवल षड दर्शनों की चर्चा होती है तो ये षड दर्शन जो है ये है वैशेष चेतन है, वैसे चीज जो कणाद मुनि के द्वारा ये दर्शन चलाया गया सिद्धांत, वैशेषिक सिद्धांत। और दूसरा है न्याय, न्याय सिद्धांत जो है ये गौतम मुनि के द्वारा चलाया गया है, गौतम मुनि के द्वारा प्रणीत है न्याय दर्शन। और योग दर्शन ये पतंजलि के द्वारा प्रणीत है योग दर्शन, पतंजलि योग दर्शन। और उसके बाद कर्म मीमांसा जो जैमिनी के द्वारा प्रणीत है, और सांख्य दर्शन जो कपिल के द्वारा प्रणीत है। तो ये दो प्रकार सांख्य दर्शन है। एक सांख्य दर्शन जो नास्तिक कपिल मुनि हुए हैं उनके द्वारा प्रणीत है, और ये थर्ड दर्शन में ये नास्तिक मुनि, नास्तिक जो कपिल मुनि है उनका सांख्य दर्शन अधिकतर प्रचलित है। किंतु भगवान जो कपिल मुनि हुए, कपिल मुनि के रूप में अवतरित हुए, उनका तो सांख्य दर्शन, ये सांख्य दर्शन के बारे में बहुत सारे लोगों को ज्ञान नहीं है। और श्रीमद् भागवतम में इस सांख्य दर्शन का वर्णन आता है जो भगवान कपिल देव के द्वारा प्रणीत है। और अंत में जो छठवां दर्शन है ये वेदांत दर्शन है जो श्री व्यासदेव के द्वारा प्रणीत है। किंतु इस वेदांत की व्याख्या शंकराचार्य ने किया है, इसकी व्याख्या की है शंकराचार्य ने, तो इसलिए जो शंकर दर्शन से ये वेदांत की व्याख्या प्रभावित है, तो इसलिए जो शंकर की व्याख्या का अनुसरण करते हैं ये लोग, वस्तुतः मायावादी लोग भी ये वेदांत दर्शन की व्याख्या शंकर दर्शन के अनुसार करते हैं। अतः ये वेदांत दर्शन भी शंकराचार्य की व्याख्या के कारण ये मायावाद से ढका हुआ है। किंतु वस्तुतः वेदांत दर्शन जो है इसकी जो प्राकृतिक व्याख्या है ये श्रीमद् भागवतम, श्रीमद् भागवत में वेदांत दर्शन की व्याख्या हुई, इसकी प्राकृतिक व्याख्या है वेदांत दर्शन। किंतु मायावादी लोग ये श्रीमद् भागवत को नहीं मानते, इसलिए शंकराचार्य ने श्रीमद् भागवत की टीकाएं नहीं लिखी, ये वेदांत दर्शन पर उन्होंने टीकाएं लिखी, भाष्य लिखे, किंतु श्रीमद् भागवत पर नहीं लिखे। क्योंकि श्रीमद् भागवतम में भगवान का जो, भगवान के जो स्वरूप का वर्णन आता है, व्यक्तिगत रूप का वर्णन आता है, तो मायावादी लोग इसकी व्याख्या करके भगवान को निराकर कभी बता नहीं सकते भागवत के आधार पर, तो इसलिए भागवत को छोड़ दिए हैं, भागवत की व्याख्या नहीं की है। अन्यथा उनका निराकार दर्शन यहां नहीं टिकेगा भागवत के आधार पर। तो इसलिए वेदांत दर्शन की जो वास्तविक व्याख्या है ये श्रीमद् भागवतम जो व्यासदेव के द्वारा प्रणीत है, और भक्तगण इस श्रीमद् भागवत को ही वेदांत दर्शन की व्याख्या मानते हैं, इसलिए शंकर भाष्य को, भाष्य का अनुसरण नहीं करते। किंतु बनारस में वेदांत दर्शन की व्याख्या शंकर भाष्य के अनुसार होता है। तो इस प्रकार चंद्रशेखर कहते हैं कि इस वाराणसी में इस छठ दर्शन का ही में, यहां छठ दर्शन की ही केवल व्याख्या होती है। किंतु ये जो तपन मिश्र जो आपके भक्त हैं, ये कभी कभी हमें भगवान कृष्ण की कथा सुनाते हैं, अन्यथा यहां कृष्ण कथा श्रवण करने के लिए कहीं अवसर प्राप्त नहीं है। यहां सब लोग इस षट दर्शन की व्याख्या करते हैं और उसी का श्रवण करते हैं, यहां कृष्ण कथा का श्रवण कोई नहीं करता। तो इस प्रकार निरंतर दुहे चिंती तुम्हार चरण सर्वज्ञ ईश्वर तुम्हें दिला दर्शन। तो चंद्रशेखर कह रहे हैं कि हम दोनों निरंतर सदा सर्वदा आपके चरणों की चिंता करते रहते हैं, और आप सर्वज्ञ ईश्वर हैं, आप सबके हृदय में परमात्मा के रूप में बैठे हुए हैं, अंतर्यामी हैं, इसलिए आपने आपने जान लिया हमारे हृदय की बात कि कि हम लोग आपकी चिंता कर रहे हैं, आपका स्मरण कर रहे हैं, आपने जान लिया, इसलिए आप आकर कृपा करके आप हमारे हमें दर्शन देने के लिए आप यहाँ पर उपस्थित हुए। सुनी महाप्रभु रावण श्री वृंदावन है दिन कत रही तार भक्त द्विजन। तो इस चंद्रशेखर और तपन मिश्र उन दोनों ने सुना कि चैतन्य महाप्रभु वृंदावन जा रहे हैं, वृंदावन की यात्रा पर। तो उन लोगों ने चैतन्य महाप्रभु से निवेदन किया कि आप कृपा करके यहाँ कुछ दिन रुकी, आप रहिए यहाँ पर और हमारा उद्धार कीजिए, आपका संग देकर हमारा उद्धार कीजिए। तो इस प्रकार जब चैतन्य महाप्रभु से दोनों ने निवेदन किया तो मिश्र कहे प्रभु जावत काशी से रहिवा मोर निमंत्रण बिना अन्न न मानिवा। तो तपन मिश्र चैतन्य महाप्रभु से अनुरोध किया कि आप जब तक काशी में रहेंगे केवल मेरे घर का निमंत्रण आप स्वीकार करिए, और किसी का निमंत्रण स्वीकार मत करिए। तो तपन मिश्र इस प्रकार आग्रह करने लगे चैतन्य महाप्रभु से केवल उनके घर पर भोजन करने के लिए और किसी का निमंत्रण स्वीकार नहीं करने के लिए। यही मतलब महाप्रभु दुई भूतर बसे इच्छा नहीं तबु तथा रहेला दिन दशे। यदि भी चैतन्य महाप्रभु की इच्छा वहां पर अधिक काल के लिए अवस्थान करने की नहीं थी, चैतन्य महाप्रभु काशी में अधिक समय रुकना नहीं चाहते थे, किंतु फिर भी दोनों सेवकों के प्रेम देखकर उनके प्रेम के वशीभूत होकर चैतन्य महाप्रभु वहां पर 10 दिन तक रुके रहे। ऐसे महाराष्ट्र विप्ल आई से प्रभु देखा रहे, प्रभु रूप प्रेम देखी हया चमत्कार। तो काशी में एक महाराष्ट्र का ब्राह्मण रह रहे थे और ये भगवान के भक्त थे, ये जो महाराष्ट्र के ब्राह्मण थे ये भगवान के भक्त थे और मायावाद द्वारा प्रभावित नहीं थे, मायावादी सन्यासियों के द्वारा प्रभावित नहीं थे। तो ये आए चैतन्य महाप्रभु का दर्शन करने के लिए तपन मिश्र के घर पर, क्योंकि समाचार फैल गया था चारों ओर कि ऐसे आए हैं सन्यासी जो देखने में बहुत सुंदर हैं और सुंदर नृत्य कीर्तन करते हैं और भगवान के दिव्य नाम का कीर्तन करते हैं। तो प्रभु रूप प्रेम देखी है चमत्कार। तो इस महाराष्ट्र विप्र ने ब्राह्मण ने चैतन्य महाप्रभु के रूप और प्रेम को जब देखा तो वो आश्चर्यचकित हो गए कि चैतन्य महाप्रभु इतने सुंदर हैं और जब भगवान श्री कृष्ण का कीर्तन करते हैं तो कैसे वो प्रेमाविष्ट होकर नृत्य करने लगते हैं। तो इसको देखकर वो आश्चर्यचकित हो गए। विप्र सब निमंत्रण प्रभु नहीं माने, प्रभु कहे आदि मोर हयांश निमंत्रण। तो वाराणसी के ब्राह्मण लोग ये समाचार पाकर वो चैतन्य महाप्रभु के पास आने लगे और महाप्रभु को अपने घर पर भोजन करने के लिए उन लोगों ने निमंत्रित किया, किंतु चैतन्य महाप्रभु उनके निमंत्रण को नहीं माना। उन्होंने कहा कि आज मेरा निमंत्रण हो गया, इस प्रकार कहते हुए वो टालते गए उनके निमंत्रण को, उनके निमंत्रण को स्वीकार नहीं किया। क्यों स्वीकार नहीं किया? एक तो तपन मिश्र का आग्रह था कि उनके घर पर चैतन्य महाप्रभु भोजन करे, किंतु उसका दूसरा कारण यह था कि वाराणसी के ब्राह्मणगण ये वैष्णव सन्यासी और मायावादी सन्यासी में कोई अंतर नहीं देखते थे, क्योंकि ये लोग वाराणसी में रह रहे थे तो वाराणसी में सब मायावादी सन्यासी ही थे जो निराकार ब्रह्म की उपासना करते थे। तो यदि चैतन्य महाप्रभु वैष्णव सन्यासी के रूप में वहां पर आए थे तो ये ब्राह्मणगण यही मानते थे कि ये भी सन्यासी हैं, वो भी सन्यासी हैं, इसमें कोई अंतर नहीं है, सब समान है। तो इनमें वैष्णव सन्यासी का क्या दर्शन है, क्या सिद्धांत है, और मायावादी सन्यासी का क्या सिद्धांत है, ये इन ब्राह्मणों को पता नहीं। तो इसलिए व्यवहार करते थे। और चैतन्य महाप्रभु को ये पता था, ये वाराणसी के ब्राह्मण ये मायावादी सन्यासी और वैष्णव सन्यासी में कोई अंतर नहीं करते। तो जब ये चैतन्य महाप्रभु को बुला रहे थे, अपने घर पर निमंत्रित कर रहे थे भोजन के लिए, तो यदि चैतन्य महाप्रभु जाते वहां पर भोजन करने के लिए तो क्या होता, तो ये लोग दूसरे मायावादी सन्यासियों को भी वहां भोजन के लिए निमंत्रित करते। जो सन्यासीगण मायावादी सन्यासीगण वाराणसी में रह रहे हैं उनको निमंत्रण चैतन्य महाप्रभु के साथ करते, क्योंकि वो उनमें कोई अंतर नहीं देखते हैं। और चैतन्य महाप्रभु मायावादी सन्यासियों से मिलना नहीं चाहते, इसलिए मिलना नहीं चाहते थे कि मायावादी कृष्ण अपराध, कि मायावादी सन्यासीगण कृष्ण के चरण में अपराध करते, इसलिए कि ये लोग सदा सर्वदा भगवान कृष्ण को निराकार मानते हैं या कृष्ण के शरीर को भौतिक मानते हैं। ये लोग सोचते हैं कि भगवान निराकार है और भगवान जब अवतरित होते हैं तो भौतिक रूप ग्रहण करते हैं, जैसे कृष्ण राम आदि अवतार है ये भौतिक रूप धारण करते हैं, यही उनकी धारणा है। इसलिए ये कृष्ण के चरण में अपराध करते हैं, कृष्ण के तत्व को ये नहीं जानते, भगवत तत्व को ये नहीं जानते। तो ऐसे अपराधियों का संग करने से व्यक्ति का भी अपराध हो जाता है, इसलिए वैष्णवगण कभी मायावादियों का संग नहीं करते। जो लोग निराकार ब्रह्म की उपासना करते हैं और भगवान का हाथ नहीं है, पैर नहीं है, आंख नहीं है ऐसा बताते हैं, तो ये सब कृष्ण के चरण में अपराध करते हैं। इसलिए वैष्णवगण न तो उनके मुख से कोई कथा श्रवण करते हैं और न उनका संग करते हैं, क्योंकि उनका संग करना, उनके मुख से श्रवण करना ये अपराध की कोटि में आता है और व्यक्ति की भक्ति नष्ट हो जाती है। यदि कोई मायावादी उनका संग करता है और उनके मुख से श्रवण करता है तो उसकी भक्ति नष्ट हो जाती है। इसलिए वैष्णवगण ऐसे मायावादियों का संग नहीं करते, भक्तगण। तो आजकल भी देखा जाता है कि ऐसे मायावादी सन्यासियों का मतवाद को बहुत सारे लोग ग्रहण करते हैं और उनके प्रवचन में भी ये मायावाद झलकता है। अधिकतर प्रवचक या कथाकार कृष्ण का नाम कम लेते हैं और ब्रह्म शब्द का उच्चारण अधिक करते हैं, परम ब्रह्म परमात्मा यही कहते हैं, ये सब मायावाद का प्रभाव है। तो चैतन्य महाप्रभु इसलिए नहीं चाहते थे इन वैष्णव ब्राह्मणों का निमंत्रण स्वीकार करने के लिए, क्योंकि मायावादी सन्यासियों से वो साक्षात्कार करना नहीं चाहते, इसलिए उन्होंने टाल दिया कि आज हमारा दूसरे जगह निमंत्रण है इसलिए हम नहीं जा पाएंगे। यही मत प्रतिदिन करे न वंचन, सन्यासी का संग भय ना माने न निमंत्रण। तो इस प्रकार श्री चैतन्य महाप्रभु लोगों की वंचना कर रहे थे, क्योंकि वो मायावादी सन्यासियों का संग करना नहीं चाहते थे, तो इसलिए वो किसी के घर पर निमंत्रण स्वीकार करने के लिए नहीं गए। प्रकाशानंद श्रीपाद सभा से बसिया वेदांत पढ़ाना बहु शिष्य गण लया। तो इस बनारस में मायावादी सन्यासियों में एक प्रधान सन्यासी थे, उनका नाम था प्रकाशानंद सरस्वती, और ये प्रकाशानंद सरस्वती अपने शिष्यों को लेकर वो वेदांत की शिक्षा दे रहे हैं, उनको वेदांत पढ़ा रहे हैं। तो इस प्रकार एक विप्र देखे आयला प्रभु का व्यवहार, प्रकाशानंद आगे कहे चरित्र तहार। तो ये जो महाराष्ट्र के ब्राह्मण थे जो गए थे चैतन्य महाप्रभु का दर्शन करने के लिए, तो चैतन्य महाप्रभु का दर्शन करने के उपरांत ये आए प्रकाशानंद सरस्वती के स्थान पर जहां पर वो अपने शिष्यों को वेदांत पढ़ा रहे थे, और आकर उन्होंने चैतन्य महाप्रभु का वर्णन किया प्रकाशानंद सरस्वती के सामने। एक सन्यास आईला जगन्नाथ हेते तार महिमा प्रताप नापारी बने। तो इस महाराष्ट्र ब्राह्मण ने प्रकाशानंद सरस्वती से कहा कि एक सन्यासी आए हैं कहां से जगन्नाथपुरी से, और उनकी जो महिमा और प्रभाव उसका वर्णन मैं नहीं कर सकता। इनकी महिमा इतनी है और उनका प्रभाव इतना विशाल है कि उनका प्रभाव और महिमा का वर्णन मैं नहीं कर सकता। सकल देखिए ताते अद्भुत कथन एकांत शरीर शुद्ध कांचन वरण। तो ये मित्र कह रहे हैं प्रकाशानंद सरस्वती से कि इस प्रकार का सन्यासी हमने कभी देखा ही नहीं, जबकि वाराणसी में इतने सारे सन्यासी उपस्थित थे, किंतु ये महाराष्ट्रीय ब्राह्मण कह रहे हैं कि इस प्रकार का सन्यासी मैंने तो कभी देखा ही नहीं। ये अद्भुत सन्यासी और इनका जो शरीर है ये बहुत सुगठित शरीर है, बहुत सुंदर शरीर है इस सन्यासी का, और शुद्ध कांचन वर्ण, और इनका जो वर्ण है ये शुद्ध सोने का वर्ण, तप्त कांचन वर्ण, क्योंकि सोने को जब आग में उसको जलाया जाता है तो सोना शुद्ध हो जाता है, तो वो सोने का जो वर्ण होता है उसी प्रकार का वर्ण था चैतन्य महाप्रभु, तप्त कांचन वर्ण, तप्त सोने का वर्ण। तो ये महाराष्ट्र ब्राह्मण कह रहे हैं प्रकाशानंद सरस्वती से कि उनका वर्ण जो है ये तप्त कांचन वर्ण, देखने में बहुत सुंदर है सन्यास, और उनका शरीर बहुत सुगठित है, बहुत सुंदर शरीर, शरीर के सारे अंग प्रत्यंग बहुत सुंदर है देखने में। आदान लंबित भुजा, और उनके जो तो बाहुएं हैं ये जानू तक जंघा तक लंबे हैं। तो चैतन्य महाप्रभु के आदान लंबित भुज बहुत लंबे लंबे हाथ, आदान लंबित भुजा कमल नयन, और उनकी जो आंखें थी ये कमल की पंखुड़ियों के समान बहुत सुंदर थी उनकी आंखें। तो इस प्रकार ये महापुरुष का लक्षण है, जानू तक जंघा तक इसका भूत लंबा रहता है और आंख कमल की पंखुड़ियों के समान, ये महापुरुष के लक्षण होते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु के ये लक्षण महापुरुष के लक्षण है, क्योंकि स्वयं भगवान थे। तो जब तक जो ईश्वर है सर्वस्व लक्षण, महाराष्ट्र ब्राह्मण कह रहे हैं कि इनके शरीर में जो भी लक्षण से दृष्टिगत तो होते हैं सब भगवान के लक्षण है। ऐसा नहीं है कि ये ब्राह्मण कोई मूर्ख ब्राह्मण था और किसी से प्रभावित होकर उसको भगवान कह रहा है, ऐसी बात नहीं है। ये ब्राह्मण विद्वान था, पंडित ब्राह्मण था, और शास्त्रों के संबंध में उनको ज्ञान था, इसलिए वो जानते थे कि भगवान का क्या क्या लक्षण होता है। इन लक्षणों को देखकर वो कह रहे हैं कि साक्षात ईश्वर का लक्षण इनके पास। जिनको शास्त्र का ज्ञान नहीं है कि भगवान के क्या लक्षण है, ऐसे मूर्ख व्यक्ति जिस किसी व्यक्ति को भगवान मान लेते हैं ये उनकी मूर्खता। यदि किसी में भगवान के लक्षण हो तब उसको भगवान हम मान सकते हैं, और शास्त्रों में भगवान के लक्षण का वर्णन है, जो भगवान है या उनके अवतार है उनके नेत्र कमल की पंखुड़ियों के समान सुंदर है, आदान लंबित भुज है, और उनके चरण में भगवान के चिन्ह होते हैं, भगवान के चरणों में ये कई चिन्ह होते हैं। कल जैसे हम बता रहे थे ध्वज अंकुश वज्र कमल शंख ये सब चिन्ह होते हैं भगवान के चरण, तो तब जाकर उसको भगवान माना जाता है। ऐसा नहीं कि जिस किसी व्यक्ति को हम भगवान मान ले। तो ये महाराष्ट्र ब्राह्मण कह रहा है कि इस सन्यासी के शरीर में सारे भगवान के लक्षण, कहां देखे ज्ञान होया यही नारायण, यही तारे देखे करे कृष्ण संकीर्तन। तो उनके ये इन लक्षणों को देखकर ये प्रतीत हो रहा है, मेरा ज्ञान हो रहा है कि साक्षात नारायण है, साक्षात भगवान जी घर देखे करे कृष्ण संकीर्तन। और जो कोई भी सन्यासी का दर्शन करता है, दर्शन करने मात्र से उसके मुख से कृष्ण नाम उत्तरित होता है, वो कृष्ण कृष्ण बोलने लगता है। तो यही भगवान का प्रभाव है कि भगवान के दर्शन मात्र से उनके नाम का उच्चारण स्वतस्फूर्त रूप से मुख से होने लगे। तो चैतन्य महाप्रभु का दर्शन करने मात्र से लोगों के मुख से कृष्ण नाम उच्चारित होता है। तो यही भगवान का प्रभाव। तो ये ब्राह्मण कह रहे हैं कि महाभागवत लक्षण सुनी भागवत शेषव लक्षण प्रकट देखित तहां। तो ये जो महाराष्ट्र ब्राह्मण जो कह रहे हैं, ये अपने मन से नहीं कह रहे हैं, ये बात ये भागवत पढ़े हैं, इसलिए भागवत से ये लक्षण बता रहे हैं, शास्त्रों का ज्ञान है। कहते हैं कि मैंने जैसे भागवत से सुना था, तो ये महाभागवत का लक्षण क्या क्या होता है, तो इस सन्यासी ने सब महाभागवत का लक्षण है। और इस प्रकार शेषव लक्षण प्रकट देखिए था, मैं देख रहा हूं उसके शरीर में सारे लक्षण प्रकट हो गए। निरंतर कृष्ण नाम जिहा तार गाय, दुई नेत्र अश्रु बहे गंगा धारा था। तो मैं देख रहा हूं कि चैतन्य महाप्रभु जब भी निरंतर कृष्ण नाम उच्चारण करते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा हरे रामा राम राम हरे हरे, तो इस हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण वो निरंतर करते रहते हैं। और जब ये हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करते हैं, तो निरंतर उनके नेत्रों से अश्रु की धाराएं प्रवाहित हो रही, वो रो रहे हैं, कृष्ण प्रेम में विह्वल होकर उनके नेत्रों से अश्रु की धाराएं प्रवाहित हो रही। तो यही कृष्ण नाम कीर्तन का लक्षण है। जो वस्तुतः कृष्ण नाम शुद्ध कृष्ण नाम कीर्तन करता है, तो भगवान के नाम कीर्तन मात्र से उनके नेत्रों से अश्रु की धाराएं प्रवाहित होती है। जो भगवान के शुद्ध नाम कीर्तन करते हैं, तो उनके नेत्रों से अश्रु की धाराएं प्रवाहित होती है। तो चैतन्य महाप्रभु की प्रभु के नेत्रों से अश्रु की धाराएं प्रवाहित हो रही है जब वो कीर्तन करते थे भगवान नाम कीर्तन। और इस प्रकार ये अश्रु की धाराएं प्रवाहित हो रही थी गंगा की धारा के समान। गंगा की धारा जैसे अनवरत निरंतर प्रवाहित होती है, और गंगा की धारा जिस प्रकार द्रुत गति से प्रवाहित होती है, उसी प्रकार चैतन्य महाप्रभु के नेत्रों से अश्रु की धाराएं निरंतर और द्रुत गति से प्रवाहित होती है। और कभी कभी चैतन्य महाप्रभु के नेत्रों से अश्रु की धाराएं इस प्रकार निकलती थी, जैसे कोई पिचकारी मारने से, जैसे ये जल की धारा निकलती है, उसी प्रकार अश्रु की धारा ऐसे सीधे निकलती है चैतन्य महाप्रभु की आंखों से, जब कृष्ण के भावावेग में आते थे चैतन्य महाप्रभु। तो इस प्रकार क्षणे नाचे हासर गाय करे क्रंदन, क्षणे हूंकार करे सिंहेर गर्जन। तो इस प्रकार कृष्ण प्रेम में आविष्ट होकर ये सन्यासी महाराष्ट्र विप्र ब्राह्मण कह रहे हैं प्रकाशानंद सरस्वती के सामने, कि इस प्रकार कृष्ण प्रेम में आविष्ट होकर ये सन्यासी कभी नृत्य करने लगते हैं, क्षण नाचे, और कभी हंसने लगते हैं, और कभी गान करने लगते हैं, कृष्ण संकीर्तन गान करने लगते हैं, और कभी क्रंदन करने लगते हैं, रोने लगते हैं कृष्ण के विरह, कृष्ण के विरह उनके लिए जब असह्य हो जाता है तो वो रोने लगते हैं। जिस प्रकार श्रीमती राधा रानी कृष्ण कहा मोरो प्राणनाथ मुरली भवन, कहाँ जाऊं कहाँ पाऊं ब्रजेंद्र नंदन। ये राधा रानी के भाव में भावित होकर चैतन्य महाप्रभु इस प्रकार कृष्ण का विराह अनुभव कर रहे हैं कि मेरे प्राणनाथ कृष्ण कहाँ है, कहाँ पर, जो अपने अपने अधर पर मुरली धारण किए हुए हैं, जो मुरली वादन कर रहे हैं, मुरली वदन, कि मेरे प्राणनाथ कृष्ण कहाँ है, कहाँ जाऊं, कहाँ पाऊं ब्रजेंद्र नंदन, मैं कहाँ पर जाऊं, कहाँ पर ये ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण को प्राप्त करूं। इस प्रकार कृष्ण के विरह में जो राधारानी जो प्रलाप कर रही थी, तो उसी प्रकार का प्रलाप से चैतन्य महाप्रभु राधारानी के भाव में कर रहे हैं। तो इस प्रकार कृष्ण का विरह अनुभव करते हुए क्रंदन कर रहे हैं, रो रहे हैं। अक्षण ओंकार करे सिंह रगर जो, और इस कृष्ण प्रेम में आविष्ट होकर कभी चैतन्य महाप्रभु हुंकार करके सिंह के समान गर्जन करते, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। तो इस प्रकार गर्जन करते हुए, हुंकार करते हुए भगवान का नाम संकीर्तन करते, प्रेम में आविष्ट होकर। जगत मंगल तार कृष्ण चैतन्य नाम, नाम रूप गुण तार सब अनुपम। तो समस्त जगत का मंगलकारी नाम, इनका इस सन्यासी का नाम है श्री कृष्ण चैतन्य, और नाम रूप गुण तार सब अनुपम। तो इस प्रकार इस सन्यासी का नाम रूप गुण ये सब अनुपम है, इसकी उपमा नहीं दी जा सकती है किसी के साथ। इसका नाम जैसा है, रूप ऐसा है और गुण भी ऐसा है। इस प्रकार नाम रूप गुण वाला इस संसार में कहीं पर दृष्टिगत नहीं होता जिसके साथ इसकी तुलना की जाए चैतन्य महाप्रभु, क्योंकि वो परम पुरुष भगवान है, असमर्थ है। कोई भी भगवान का समकक्ष हो नहीं सकता या उनसे बढ़कर नहीं हो सकता। देखिते से जानी तार ईश्वर रीति, अलौकिक कथा सुनी के करे प्रति। तो उसको देखने से और उसके व्यवहार से पता चलता है कि ये स्वयं साक्षात परमेश्वर है, भगवान, क्योंकि भगवान का स्वभाव उनमें परिलक्षित होता है। तो इस प्रकार अलौकिक कथा सुनी केकरे प्रति, और उनकी जो कथा है, उनका जो व्यवहार है, ये अलौकिक है, ये साधारण मनुष्य जैसा व्यवहार उनका नहीं है। और उनके व्यवहार को यदि कोई सुनेगा तो कौन उस पर विश्वास कर सकता है? किसी को विश्वास नहीं होगा कि वह ऐसा व्यवहार कर रहा है, अलौकिक रीति, तो कौन विश्वास करेगा जब तक कोई नहीं देखेगा? श्री चैतन्य महाप्रभु के इस व्यवहार को जब तक कोई नहीं देखेगा, बिना देखे केवल सुनकर वो विश्वास नहीं कर सकता। वो सोचेगा कि ये असंभव है, कि संभव नहीं हो सकता। तो सुनिया प्रकाशानंद बहुत हासिल विप्रे उपहास करे कहीं से लगे। तो ये प्रकाशानंद सरस्वती जो मायावती सन्यासियों का मुखिया था, प्रधान था, उसको इन बातों पर विश्वास नहीं था, क्योंकि ये मायावती सन्यासी था, तो इसलिए वो हंसने लगा। ये महाराष्ट्र के ब्राह्मण की बातों को सुनकर वो हंसने लगा और उसका उपहास करने लगा, मजाक उड़ाने लगा। विप्रे उपहास करी कहित लागेला, उसका मजाक उड़ाते हुए, उपहास करते हुए कहने लगा प्रकाशानंद सरस्वती। सुनिया से गौड़ा देशर सन्यासी भावुक, केशव भारती शिष्य लोक प्रतारक। तो ये चैतन्य महाप्रभु की निंदा प्रारंभ करती इस प्रकाशानंद सरस्वती ने, क्योंकि ये कृष्ण के चरण में अपराधी हैं, इसलिए कृष्ण की निंदा करना उनके भक्तों की निंदा करना ये उनके लिए बड़ी बात नहीं। तो ये प्रकाशानंद सरस्वती इस महाराष्ट्र ब्राह्मण का उपहास करते हुए चैतन्य महाप्रभु की निंदा करने लगा। उसने कहा कि मैंने सुना है ये गौड़ देश बंगाल से एक सन्यासी है, आया है जो बहुत भावुक है, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं सेंटिमेंटल, ये बहुत भावुक है और केशव भारती का शिष्य है, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने केशव भारती से सन्यास दीक्षा ग्रहण की और वे केशव भारती मायावती संप्रदाय से थे, किंतु श्री चैतन्य महाप्रभु ने जब उनसे सन्यास दीक्षा ली उसके पहले चैतन्य महाप्रभु जो कि स्वयं कृष्ण थे उन्होंने एक स्वप्न के माध्यम से कहकर चैतन्य केशव भारती को दीक्षित किया, क्योंकि केशव भारती मायावती संप्रदाय के थे और चैतन्य महाप्रभु मायावती मंत्र ग्रहण करना नहीं चाहते, मायावती सन्यासी मंत्र ग्रहण करना नहीं चाहते। जब सन्यास ग्रहण किया जाता है तो उस समय सन्यास दीक्षा में सन्यास मंत्र ग्रहण किया जाता है, किंतु चैतन्य महाप्रभु मायावती सन्यास मंत्र ग्रहण करना नहीं चाहते। इसलिए जब उन्होंने मायावती सन्यासी केशव भारती से दीक्षा लेने के लिए उन्होंने मनस्थ किया और केशव भारती से मिले, वस्तुतः केशव भारती यद्यपि मायावती संप्रदाय के थे फिर भी अंतर में उनका भक्ति भाव था, इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने उनको चुना था उनसे दीक्षा लेने के लिए। तो चैतन्य महाप्रभु ने दीक्षा लेने से पहले जब केशव भारती से मिले तो केशव भारती को उन्होंने बताया कि मैंने कल रात में एक स्वप्न देखा, चैतन्य महाप्रभु ने कहा केशव भारती से दीक्षा लेने से पहले, और उन्होंने कहा कि मैंने कल रात में एक स्वप्न देखा और उस स्वप्न में एक ब्राह्मण आकर मुझे दीक्षा दे रहा है और वो ब्राह्मण इसी मंत्र का उच्चारण कर रहा है, इसी सन्यास मंत्र का उच्चारण कर रहा है। तो ये कहकर सन्यास मंत्र को चैतन्य महाप्रभु ने केशव भारती को बता दिया कि उनको कौन सा सन्यास मंत्र उनको देना है, ये प्रकरण में परोक्ष में बता दिया कि ये ब्राह्मण मुझे यही मंत्र बता रहा है, यही मंत्र दे रहा सन्यास मंत्र के रूप। तो जब केशव भारती ने इस प्रकार सुना चैतन्य महाप्रभु से, क्योंकि स्वयं भगवान थे और वही स्वयं मंत्र बता रहे हैं केशव भारती को, तो केशव भारती ने उस मंत्र को चैतन्य महाप्रभु से ग्रहण करके पुनः सन्यास दीक्षा के समय वही मंत्र प्रदान किया चैतन्य महाप्रभु। इस प्रकार केशव भारती चैतन्य महाप्रभु के पहले शिष्य हुए, उनसे मंत्र ग्रहण किया और बाद में चैतन्य महाप्रभु को मंत्र प्रदान किया। इस प्रकार केशव भारती भी धन्य हो गए चैतन्य महाप्रभु के सन्यास गुरु के रूप में। तो ये प्रकाशानंद सरस्वती कह रहे हैं कि केशव भारती शिष्य लोक प्रसारक, तो कह रहे हैं कि मैंने सुना है कि जो श्री कृष्ण चैतन्य है ये केशव भारती का शिष्य है और केशव भारती हमारे संप्रदाय के हैं, मायावती संप्रदाय के, किंतु ये केशव भारती से दीक्षा लेने के पश्चात भी ये मायावती संप्रदाय के सन्यासियों के साथ नहीं मिलता, ये मायावती संप्रदाय से दीक्षा उन्होंने ली है तो मायावती सन्यासियों के साथ रहना चाहिए, किंतु ये मायावती सन्यासियों के साथ नहीं रहता ये श्री कृष्ण चैतन्य, और ये कृष्ण नाम संकीर्तन करते हुए नाचता गाता है भावुक बनकर, इससे लोगों को ठग रहा है, लोग सता रहे। तो इस प्रकार महाराष्ट्र ब्राह्मण का उपहास करते हुए केशव भारती श्री चैतन्य महाप्रभु की निंदा कर रहा है। चैतन्य नामकार भावुक गण लया देशे देशे ग्रामे ग्रामे गुले नाचाया। तो ये केशव भारती का कैसे है, नाम है चैतन्य, कृष्ण नाम नहीं लिया सका समंद्र। ये देखिए वो चैतन्य नाम बोलते हैं, श्री कृष्ण चैतन्य, चैतन्य महाप्रभु का नाम था श्री कृष्ण चैतन्य, किंतु श्री कृष्ण छोड़कर केवल चैतन्य नाम ले रहा है, प्रकाश नाम सरस्वती ले रहा है। तो जो कृष्ण के चरण में अपराध करते हैं, जो कृष्ण के प्रति ईर्षा भाव रखते हैं, ये कृष्ण के चरण में अपराध करने के कारण भगवान कृष्ण का नाम ये नहीं ले सकते। इसलिए शास्त्र में बताया गया कि जो पापी हैं उनके मुख से कृष्ण नाम निस्सरित नहीं होता, नहीं निकलता। जो पुण्यवान है वो लोग कृष्ण नाम का उच्चारण कर सकते हैं, पापी लोग नहीं कर सकते कृष्ण नाम के उच्चारण, कृष्ण नाम संकीर्तन। तो केशव प्रकाशानंद सरस्वती इतना बड़ा विद्वान पंडित हैं, मायावादी विद्वान है, सन्यासी हैं, किंतु कृष्ण नाम उनके मुख से नहीं निकलता अपराध के कारण। और आप चैतन्य महाप्रभु की निंदा कर रहा है, स्वयं भगवान की निंदा कर रहा है, तो कह रहा है कि इसका नाम चैतन्य है। और ये क्या करता है ना, भावुक गणों को साथ लेकर, दूसरे भावुकों को साथ लेकर ये ग्राम ग्राम में, देश देश में भ्रमण करता है और नृत्य करने लगता है, नाचने लगता है सन्यासी होकर। ये नाचना सन्यासी का काम नहीं है, प्रकाशानंद सरस्वती कह रहा है। जे तारे देखे सही ईश्वर करे कहे, ऐसे मोहन विद्या जे देखे से मोहे। तो ये चैतन्य के पास कुछ मोहन विद्या है, ये मोहित करने वाली विद्या इसने सीख रखी, कुछ तंत्र मंत्र कर रखा है शायद। तो ये जहां कहीं भी जाता है सब लोग इसको ईश्वर ईश्वर बोलने लगते, नारायण नारायण कहने लगते। तो ये लगता है कि ये सब लोगों को मोह लेता है मोहिनी विद्या के बल पर, जिससे कि जो कोई उसको देखता है उसको ईश्वर मान बैठता है। सार्वभौम भट्टाचार्य पंडित प्रबल सुनी चैतन्य संगे हैल पागल। तो ये प्रकाशानंद सरस्वती कह रहा है कि मैंने सुना है कि जगन्नाथपुरी में एक महान पंडित थे, बहुत बड़े मायावादी दार्शनिक पंडित थे, उनका नाम था सार्वभौम भट्टाचार्य। ये शंकर भाष्य का अनुकरण करते थे और बहुत बड़े विद्वान, यहां तक कि शंकर संप्रदाय के सन्यासी गण भी आकर सार्वभौम भट्टाचार्य से शिक्षा ग्रहण करते थे, वेदांत दर्शन का अध्ययन करते थे। किंतु जब चैतन्य महाप्रभु गए जगन्नाथपुरी और सार्वभौम भट्टाचार्य से उनका उनकी भेंट हुई, तो सार्वभौम भट्टाचार्य चैतन्य महाप्रभु को वेदांत दर्शन की शिक्षा देना चाहते थे। तो चैतन्य महाप्रभु नम्र व्यवहार प्रदर्शन करते हुए सार्वभौम भट्टाचार्य से वेदांत दर्शन की शिक्षा ग्रहण करने के लिए राजी हुए और 7 दिन तक सार्वभौम भट्टाचार्य चैतन्य महाप्रभु को वेदांत दर्शन की शिक्षा देते रहे, किंतु चैतन्य महाप्रभु कुछ भी नहीं बोले। 7 दिन के पश्चात सार्वभौम भट्टाचार्य ने चैतन्य महाप्रभु से पूछा कि सन्यासी, आप ये 7 दिन से मेरे वेदांत दर्शन की व्याख्या सुन रहे हैं, किंतु आप अभी तक कुछ नहीं बोल रहे हैं, कोई प्रश्न नहीं पूछ रहे हैं, क्या मेरी व्याख्या आपकी समझ में आ गई जिसके कारण आप प्रश्न नहीं पूछ रहे हैं? तो चैतन्य महाप्रभु ने उत्तर दिया कि सार्वभौम, तुम वेदांत दर्शन का जो सूत्र का पाठ करते हो वो तो मेरी समझ में आ जाता है, किंतु तुम्हारी व्याख्या मेरी समझ में नहीं आती। तो सार्वभौम भट्टाचार्य क्रोधित और आश्चर्यचकित हुए, अभी तक किसी ने उनको इस प्रकार की बातें नहीं कही कि वेदांत सूत्र किसी की समझ में आ जाए और सार्वभौम गणतंत्र की व्याख्या उसकी समझ में ना आए तो परोक्ष में चैतन्य महाप्रभु कह रहे थे कि वेदांत सूत्र को समझना अभी सरल है किंतु तुम्हारी व्याख्या बहुत कठिन है, वो मेरी समझ में नहीं आ रही, तुम किस प्रकार की व्याख्या कर रहे हो। इसका अर्थ है कि परोक्ष में सार्वभौम गणतंत्र की व्याख्या की निंदा कर रहे थे चैतन्य महाप्रभु, अर्थात तुम्हारी व्याख्या ठीक नहीं है। व्याख्या इसलिए की जाती है कि मूल सूत्र को और अधिक विस्तार से समझाने के लिए, और यदि किसी को ये सूत्र समझ में आ जाता है व्याख्या की आवश्यकता नहीं। और सार्वभौम इस प्रकार की व्याख्या कर रहे थे तो ये सूत्र के मूल अर्थ को वो लुप्त कर रहे थे, इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि तुम्हारी व्याख्या मेरी समझ में नहीं आती है कि तुम क्या बकबक कर रहे हो, क्या बता रहे हो। व्याख्या सूत्र तो समझ में आ जाता है। तो सार्वभौम भट्टाचार्य से बहुत अपमानित अपने को अनुभव किए। तो चैतन्य महाप्रभु ने जब कहा कि सूत्र का अर्थ जो है ये सूर्य के समान ये बहुत स्पष्ट है और तुम्हारी व्याख्या उस सूत्र के अर्थ को आच्छादित कर देती है, इसलिए तुम्हारी व्याख्या ठीक नहीं है। तो चैतन्य महाप्रभु की कथा इस प्रकार सुनकर सार्वभौम अपमानित अनुभव किए। तो इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु ने वेदांत सूत्र की व्याख्या की स्वयं, क्योंकि वो बहुत बड़े विद्वान थे और ऐसे ही स्वयं भगवान। तो जब वेदांत सूत्र की व्याख्या उन्होंने सार्वभौम भट्टाचार्य के सामने की तो सार्वभौम भट्टाचार्य कुछ नहीं बोल सके, चैतन्य महाप्रभु की व्याख्या क्या, तो वो अपमानित अनुभव करते हुए घर पर चले गए और वो कुछ खाए पिए नहीं, इतने दुखी हो गए सार्वभौम भट्टाचार्य। और श्री चैतन्य महाप्रभु को कृपा करना था सार्वभौम भट्टाचार्य के ऊपर, तो रात भर सार्वभौम भट्टाचार्य कुछ खाए पिए नहीं और सोए नहीं। सुबह सुबह चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ जी के महाप्रसाद लेकर आए सार्वभौम के पास, और जब सुबह लाकर सार्वभौम को महाप्रसाद देते हैं तो उस समय सार्वभौम भट्टाचार्य स्नान किए नहीं थे, तो बिना स्नान के कैसे वो कुछ खाए, इस प्रकार धर्म संकट में पड़े। फिर जब उन्होंने देखा कि महाप्रसाद जगन्नाथ जी का दे रहा है तो उन्होंने सोचा कि महाप्रसाद के लिए कोई नियम नहीं है, महाप्रसाद को प्राप्त करने पर तुरंत उसका सम्मान करना चाहिए, उसको भक्षण करना चाहिए, खाना चाहिए। तो सार्वभौम भट्टाचार्य ने ग्रहण किया जगन्नाथ जी का महाप्रसाद। तो उसी समय चैतन्य महाप्रभु ने अपने सर्वज रूप का दर्शन दिया था सार्वभौम भट्टाचार्य, और जब सार्वभौम भट्टाचार्य ने देखा चैतन्य महाप्रभु के सर्वज रूप जिसमें एक तो सन्यासी का रूप है जो चैतन्य महाप्रभु के रूप में दंड कमंडल धारण किए हुए थे, और दूसरा रूप है कृष्ण रूप जो बंसी हाथ में दोनों हाथ में धारण किए हुए, और तीसरा रामचंद्र का रूप, भगवान रामचंद्र का रूप इसमें धनुष बाण हाथ में लिए हुए। इस प्रकार ये चैतन्य महाप्रभु ने अपने स्वरूप को दर्शन कराया सार्वभौम भट्टाचार्य षड्भुज रूप। तो तब से सार्वभौम भट्टाचार्य चैतन्य महाप्रभु के भक्त बन गए, इस मायावादी दर्शन को त्याग दिया। इतने बड़े महान विद्वान मायावादी पंडित उन्होंने त्याग दिया इस मायावादी भक्त को और चैतन्य महाप्रभु के परम भक्त बन गए। तो प्रकाशानंद सरस्वती वही बात कह रहे हैं कि मैंने सुना है कि जगन्नाथपुरी में जो सार्वभौम भट्टाचार्य जो महान पंडित था ये चैतन्य के संग में आकर वो पागल हो गए, अपने पांडित्य को त्याग दिया और पागल होकर इस चैतन्य के साथ मनुष्य कीर्तन करने लगे। बुद्धि भ्रमित हो गई। इस प्रकार ये प्रकाशानंद सरस्वती सर्वम भट्टाचार्य की भी निंदा कर रहा है। इस प्रकार हम कल के सत्र में फिर सुनेंगे कि प्रकाशानंद सरस्वती और क्या कह रहे हैं और फिर कैसे प्रकाशानंद का उद्धार हुआ, चैतन्य महाप्रभु ने उद्धार किया। कल सुबह के सत्र में सुनेंगे। हरे कृष्ण।